शांति। आज का जो टॉपिक है आर्ट ऑफ चार्ट, चार्ट रखने की कला और चार्ट को मेंटेन करने की कला। तो ये जो चार्ट को मेंटेन करने की कला है, ये लौकिक में कहें कि जर्नल लिखने की कला या डायरी मेंटेन करने की कला, ये कला, ये आदत लौकिक में भी अगर कोई सक्सेसफुल जितने भी लोग हुए हैं सब में ये आदत देखी गई है। और एज ब्राह्मण्स इस संगम युग पर, इस जीवन में हमें इस कला को बनाना भी है, इसका निर्माण भी करना है और साथ ही साथ इस कला में एक्सेल भी होना है, परफेक्ट होना है। अगर हम चार्ट रखने की कला में परफेक्ट हैं तो जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को डेफिनेटली हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज चार्ट रखने की कला को हम दो बातों में जानेंगे। एक तो चार्ट रखने की आवश्यकता क्यों है, इसके फायदे क्या हैं, और दूसरा चार्ट मेंटेन करने की टेक्निक क्या है। टेक्निक में बाबा के कौन कौन से महावाक्य, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न मन में आता है कि हमें चार्ट रखने की आवश्यकता ही क्यों है, क्या बिना चार्ट रखे हम अपने संगम युग का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्या जो हमारा लक्ष्य है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्या सफलता नहीं मिल सकती चार्ट रखे बिना, क्यों रखना है हमें चार्ट? चार्ट से हमारा अटेंशन आता है, यस, स्वयं की चेकिंग के लिए। तो सबसे पहली चीज, ये बहुत सारे फायदे हैं जो हम एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि जो हमारी चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं चार्ट रख के। अगर हम चार्ट नहीं रखते, जिसको कहते हैं कि हमारा जो ध्यान है वो बिखरा हुआ होता है, अगर ध्यान बिखरा हुआ है, अटेंशन बिखरी हुई है, चेतना बिखरी हुई है, तो डिजायर्ड रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। तो पहला जो रीजन है चार्ट रखने का, हमें अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को चैनलाइज करना है और फोकस करना है। जैसे कि सूरज की रोशनी होती है, आप सबने बचपन में स्कूल टाइम में एक्सपेरिमेंट किया है कि सूरज की रोशनी को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से एकाग्र करेंगे तो फिर वो पेपर को बर्न कर सकती है। लेकिन सूरज की रोशनी तो पहले भी थी, लेकिन क्या करा, उसको हमने एक जगह फोकस किया। तो चार्ट रखने से हम अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को चैनलाइज कर सकते हैं, पहला फायदा। और दूसरा फायदा, चार्ट जब रखते हैं तो हमारा अटेंशन होता है, हमारी अलर्टनेस बढ़ती है, किस चीज की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ। अगर चार्ट नहीं रखेंगे तो डेली बेसिस पे हमें अपना लक्ष्य याद नहीं आएगा, लेकिन अगर चार्ट डेली बेसिस पे होगा तो हमें अपने लक्ष्य याद रहेंगे। चार्ट रखने से हम अपने ट्रैक पे होते हैं, जो हमारी पटरी है, हमारी कौन सी पटरी है, संगम युग का जीवन, जो स्व पुरुषार्थ है, जो सेल्फ प्रोग्रेस है, उसके हम ट्रैक में रहते हैं। चार्ट रखने से और भी फायदे हैं। अब हमारे जो लक्ष्य हैं सिर्फ एक तो नहीं है, बहुत सारे लक्ष्य हैं। कुछ लक्ष्य हमारे ऐसे हैं शॉर्ट टर्म, कुछ है मिड टर्म और कुछ है लॉन्ग टर्म। चार्ट रखने से हम उन लक्ष्य को डिवाइड कर सकते हैं। अगर वैसे कभी सोचेंगे तो कभी भी हमारे मन में वो हमेशा अवेयर नहीं होगा, हमेशा स्मृति नहीं रहेगी कि अभी मेरा दो दिन का लक्ष्य कौन सा है, या मेरा एक हफ्ते का लक्ष्य कौन सा है, एक महीने का कौन सा, और छह महीने का कौन सा है, और बिल्कुल एंड का कौन सा है। तो सारे लक्ष्य को स्मृति में रखने के लिए, शॉर्ट मिड टर्म लॉन्ग टर्म, उसके लिए हमें चार्ट रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम क्या है, सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, तीव्र नहीं, स्व पुरुषार्थ ग्रुप। तो स्व पुरुषार्थ ग्रुप में हम बैठे हैं, चार्ट रखने से क्या होगा, हमारा स्व पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ में कन्वर्ट होता है। चार्ट रखने से हम अपने एफर्ट को इंटेंसिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने गीत में सुना ना कि वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अब हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एक जन्म का, और उसमें लक्ष्य बहुत सारे हैं। तो इस बहुत सारे लक्ष्य और संपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए लिमिटेड टाइम में हमें अपने एफर्ट को बढ़ाने के लिए, उसको इंटेंसिफाई करने के लिए चार्ट जरूर रखना है। और क्या फायदे हैं? अब बाबा ने कौन सी बातें बोली हैं कि एक तो है लक्ष्य, और जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वो फिर लक्षण में कन्वर्ट होता है। तो बाबा कहते हैं कि चार्ट रखने से आपके लक्ष्य और लक्षण का जो गैप है वो कम हो जाएगा और आके दोनों मिल जाएंगे। अगर चार्ट नहीं होगा तो लक्ष्य और लक्षण की चेकिंग भी नहीं हो सकती। तो चार्ट रखने से हमारी चेकिंग होती है। और कुछ फायदे? यस, चार्ट रखने से हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, पंचुअलिटी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब दो दिन पहले चार्ट रखने की क्लास का पता चला तो इस क्लास को करने के लिए भी एक चार्ट रखना पड़ा, क्योंकि अगर चार्ट नहीं रखते तो फिर दो दिन में उसकी प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं था। चार्ट रखने से हम ट्राइज के रूल को फॉलो कर सकते हैं। रूल ऑफ ट्राइज माना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको पहले करना, और जो बाद की चीज है उसको बाद में करना। तो चार्ट रखने से क्या होगा कि जब क्लास करानी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? चर्निंग। तो चर्निंग वाली चीज पहले और रेफरेंसेस वाली चीज बाद में। तो चार्ट रखने से हमें ये सब फायदे होते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि चार्ट रखने से हमें अपनी कमियों का पता चलता है। अगर चार्ट नहीं रखेंगे तो इग्नोरेंस में हम अपना ब्राह्मण जीवन व्यतीत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हमें बहुत सारी बातों का आज भी नहीं पता कि जो मेरे अंदर कमी कमजोरियां हैं, जो मुझे अभी नहीं पता, चार्ट रखने से मैं उन कमी कमजोरियों के बारे में जान पाती हूं। अब आगे आते हैं कि इसकी टेक्निक क्या है। बाबा ने चार्ट को बहुत तरीकों से डिफाइन किया है। एक तो हमारे मुख्य चार सब्जेक्ट्स, हम चार सब्जेक्ट्स के बीच पे चार्ट रख सकते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और किस चीज का चार्ट रख सकते हैं? हम अपनी दिनचर्या का चार्ट रख सकते हैं। बाबा ने हमारी पूरी दिनचर्या स्पेसिफाई की है। और पर्सनलाइज चार्ट कौन सा होगा? कोई एक स्पेसिफिक चीज, कोई एक स्पेसिफिक लक्ष्य जो हमें प्राप्त करना है उसका हम चार्ट रख सकते हैं। तो हम अपने सब्जेक्ट वाइज जाएंगे। अब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसमें ट्राइज किसको फॉलो करेंगे? योग। तो सबसे ज्यादा टेंशन किस में चाहिए? योग में। तो योग के चार्ट में कुछ बातें तो हमें पता है और कुछ बातें हमें नई लेकर आनी है। चार्ट में हमें दो रूल फॉलो करने हैं, जैसे गीत में सुना, एक तो वक्त है कम लंबी मंजिल तेज कदम चलना होगा, ठीक है, और दूसरा क्या, हमें नूतन पथ रचना होगा। तो एक तो हमें फास्ट करना है और अपने चार्ट में हमें न्यूनेस लेकर आनी है। तो जो भी हम चार्ट रखेंगे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में, फास्ट जो हमें पता है प्लस हम उसमें नया क्या कर सकते हैं। और दूसरा रूल कौन सा है? दिल और दिमाग का रूल। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं दिमाग की भी हैं, लेकिन बाबा दिमाग के साथ क्या ऐड करता है? दिल ऐड करता है, इमोशंस ऐड करता है। तो चार्ट में हमें दिमाग को तो यूज करना ही करना है, लेकिन दिल को भी यूज करना है। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है योग का। तो योग में सबसे पहले क्या होता है? योग की स्टार्टिंग कहां से होती है? अमृत वेला। तो अमृत वेला हमें याद करना है। बाबा ने इसमें न्यूनेस कौन सी बताई? जो नया बताया कि सबसे पहले उठते ही अमृत वेला, जो फर्स्ट परिवर्तन करना है, जो फर्स्ट लेसन था, और वही रोज याद रखना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अगर आंख खुलते ही ये चेंज, ये अवेयरनेस, ये चेकिंग कर ली तो फिर हमारा पूरा दिन अच्छे से ठीक से बीतेगा। तो अमृत वेले का योग। सेकंड चीज जो हम सबको पता है वो हम थोड़ा सा फास्ट लेंगे कि योग में सबसे पहली चेकिंग जो हमें करनी है कि हमारा सिटिंग मेडिटेशन कितना है, कि हम बैठकर योग कितना करते हैं। हम सब कहते हैं राजयोग बहुत आसान है, इसको हम चलते फिरते कर सकते हैं, ड्राइविंग करते कर सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि हमारे इग्नोरेंस हो रही है कि योग हम सिर्फ ड्राइविंग करते ही ना करते हो, योग हम सिर्फ चलते फिरते ही ना करते हो, ट्रैवलिंग में ही ना करते हो, हमें बैठकर योग करना है। जैसे कभी कुछ नए लोग आते हैं जिनको जो मेडिटेशन सीखने आते हैं, आजकल एक नया चेंज आया है, जो नई आत्माएं आती हैं, जो मेडिटेशन सीखने आ रही हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स सब कहते हैं हमें मेडिटेशन सीखना है और वो एक भी वर्ड सुनना नहीं चाहते। द मोमेंट दे एंटर उनको मेडिटेशन करना है और कराना है, और मेडिटेशन कराने के बाद हम उनको फिर फर्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्लास के बीच में एक होमवर्क देते हैं, और वो कौन सा फिजिबल होमवर्क है, हम उनको कहते हैं कि आप सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले 10 मिनट साइलेंस में बैठो। अगर मेडिटेशन नहीं भी आता, डे वन है, टेक्निक नहीं पता, लेकिन फिर भी साइलेंस में बैठो। साइलेंस में बैठने से क्या होगा, हमारा इंटेलेक्ट क्लियर होता है। तो यही हमें अपने साथ फॉलो करना है कि हमें सिटिंग मेडिटेशन को स्ट्रांग करना है और उसका टाइम बढ़ाना है। जितना हमारा पर्सनल सिटिंग मेडिटेशन ज्यादा होगा, उतना हम औरों को योग का अनुभव अच्छा करा पाएंगे। तो फर्स्ट इज सिटिंग मेडिटेशन। नेक्स्ट फिर है चलते फिरते वाला, जो हमें पहले से पता है, जो हम हर घंटे में अलार्म लगा सकते हैं। और योग में न्यूनेस क्या लाएं, ये तो था दिमाग, अब न्यूनेस कौन सी लाएंगे योग में? स्लीपिंग मेडिटेशन। ये तो हमारे रूटीन में पहले ही आ चुका है, और न्यूनेस क्या ला सकते हैं? यस, ये दिल की बात है, जो बहन बता रही है दिल की बात है। हम अभी न्यूनेस को डिस्कस करेंगे कि बाबा ने हमें बताया आत्मा के साथ गुण है। योग में मोनोटोनस ना आए तो हम रोज योग में नए नए टॉपिक्स लेते हैं, तो एक दिन हम एक गुण को लेंगे, उसके ऊपर कमेंट्री करेंगे। हम औरों को कमेंट्री कराते हैं, और औरों को कमेंट्री कराने का मौका कितना मिलता है लाइव? रोज तो नहीं मिलता, तो हमें खुद को कमेंट्री करानी है। खुद को कमेंट्री एक होती है मन में, एक होगी बोल के, तो हम बोल कर भी खुद को कमेंट्री करा सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो हम उस बोल को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये रिसेंटली मुझे मजबूरीवश करना पड़ा, प्लान नहीं था, क्योंकि जब कुछ लोग आते हैं मेडिटेशन करने के लिए तो हम लाइव उनको कमेंट्री कराते हैं, और फिर नेक्स्ट डे वो आएंगे, नेक्स्ट क्लास एक दो तीन चार दिन बाद होगी, उस बीच में उनकी सस्टेनेंस के लिए हमें उनको कुछ देना है। तो पीस के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर, प्यार के ऊपर, ऐसे हम 5-5 मिनट की कमेंट्री खुद को करा सकते हैं, बोल के रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको फिर दे सकते हैं। ये सेवा में भी काम आएगा। तो ये एक नई बात, ये न्यूनेस हम योग में, योग के चार्ट में ला सकते हैं। सेम थिंग कि सबसे पहले हर चीज की शुरुआत होती है मन से, फिर शब्दों से, फिर कर्म से। तो योग की कमेंट्री मन से शुरू हुई, फिर वाणी में आई, और फिर हम उसको लिख भी सकते हैं। तो योग की कमेंट्री को लिखना भी एक न्यूनेस है, ये एक नई चीज हम ला सकते हैं। और लास्ट है दिमाग प्लस दिल। तो योग में दिल कौन सा होगा, जो बहन ने बताया? आपने सारी प्रैक्टिस कर ली लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, मोनोटोनस फील होता है, तो तब क्या करना चाहिए? हाँ, बाबा से हर संबंध का अनुभव करना चाहिए। योग ना करें, सिर्फ बाबा से बात कर ले। और इसमें जो एक और दिल की बात यूज हो सकती है कि हम सब बाबा से मिल चुके हैं और मिलते हैं। किन तरीकों से मिल चुके हैं? साकार में मिल चुके हैं और अव्यक्त रूप में मिलते हैं। हम सबके कोई ना कोई बहुत सुंदर अनुभव हो चुके हैं, जो हमारा पर्सनल बेस्ट अनुभव है। कौन सा अनुभव? जिसमें हमें सबसे ज्यादा बाबा के प्यार की अनुभूति हुई थी, उस अनुभव को दोबारा से अपने मन को रिमाइंड करें। जब वो अनुभव दोबारा से हम रीकैप करेंगे तो फिर हमारी जो योग में मोनोटोनस चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी। और योग का बेस क्या है? बाबा से प्यार। तो बाबा से प्यार होगा तो योग ऑटोमेटिकली होगा। तो न्यूनेस क्या है कि हम कमेंट्री मन अपने आप को कराएं और लिखें, और दिल की बात क्या है कि अपने अच्छे अनुभवों को रीकैप करें। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है योग के एकदम बाद? योग के एकदम बाद ज्ञान। योग और ज्ञान कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके बाद धारणा और सेवा। तो ज्ञान में दिमाग की बात कौन सी? ज्ञान में मतलब मुरली सुनना और सुनाना। अक्सर हम क्या करते हैं? सुनते हैं, क्योंकि आइडियल तरीका बाबा ने क्या बनाया है, हमें मुरली सुनते हैं। बाबा के महावाक्य है इसमें, जो दिल की बात है, कि जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें अपने आप को याद दिलाना है वन सिंगल सेंटेंस कि मुझे भगवान बोल रहे हैं, मुझे भगवान पढ़ा रहे हैं, अभी भगवान यह बोल रहा है। अगर ये याद होगा तो मुरली सुनते वक्त मेरा टेंशन 100%। एक और चीज बाबा ने बोली कि जब हम मुरली सुनते हैं तो सोचना चाहिए कि भगवान आया है किसको पढ़ाने, अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट को पढ़ाने। सब फेवरेट होंगे लेकिन मैं बाबा का फेवरेट और लाडला स्टूडेंट हूँ। भगवान आया है मुझे पढ़ाने के लिए। तो हम मुरली सुनते हैं और नेक्स्ट है सुनाते हैं। सुनाने आपने सुनाने का अनुभव किया है तो सुनते वक्त ज्यादा फायदा होता है कि सुनाते वक्त? क्या फायदा है? खुशी तो सुनते वक्त भी आएगी, भगवान पढ़ा रहे खुशी आ गई। सुनाते वक्त नींद नहीं आएगी, सुनाते वक्त एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, साथ साथ सुनाते वक्त एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, अलर्टनेस रहेगी। और बाबा ने मुरली के लिए बोला है कि मुरली सुनो माना उसका स्वरूप बन जाओ। तो सुनाते वक्त वो स्वरूप बनना हमें अलर्टनेस होने की वजह से इजी होगा। मम्मा का एग्जाम्पल है, मम्मा मीन्स मम्मा की मेन क्वालिटी क्या थी? मुरली सुनी और उसका स्वरूप बन गई। तो ये है सुनाने का महत्व। अगला जो मुरली का चार्ट है वो उसमें है, हाँ तो अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करना पड़ेगा शुरू से लेकर एंड तक। और तीसरा है लिखना, लिखने की कला, मुरली में लिखने की कला। इसके लिए बहुत अच्छा लाइव रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि मेरी एक मित्र हैं जो मेरी MBBS की क्लास फेलो भी हैं, हमने MBBS साथ में किया, अभी वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं केरला में। वो पिछले 2 साल से उन्हें भी अध्यात्म का स्पेशल इंटरेस्ट आया तो उन्होंने कहा कि मुझे कोर्स करना है। केरला में वो किसी सेंटर में नहीं आ सकते, यहाँ आना पॉसिबल नहीं, दिल्ली आना पॉसिबल नहीं, फिर कोर्स कैसे कराएं? तो वट एवर मीडिया का उनको हेल्प दिया, वेबसाइट बताई, कुछ वीडियोज ऑडियोज दिए। ऐसे 2 साल बीत गए, फिर अचानक से एक दिन फोन आया कि मुझे कोर्स करना है। तो फिर फोन पे उनको कोर्स कराया। तो लाइफ में पहली बार किसी को फोन पे कोर्स कराया, 3-4 दिन में कोर्स खत्म हो गया। कोर्स के बाद कौन सा स्टेप आता है? मुरली का। तो हमने कहा फोन पे हम आपको मुरली सुनाएंगे, जस्ट 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए 15 मिनट के लिए। क्यों? हाँ थके, वो थके क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे डबल होमवर्क करना पड़ता है, क्योंकि जब आप कोर्स कराते हो तो मुझे हिंदी में वो मुरली के पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। मैंने उन्हें कहा था कि जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पहले से लिख के रखना कि आंखों के सामने वो हो। तो उन्होंने कहा कि वैसे मैं इंग्लिश में रोज मुरली लिखती हूँ लेकिन इस क्लास की वजह से मुझे हिंदी में भी उसको लिखना पड़ता है। तो मैंने उनसे पूछा आप इंग्लिश में कब से लिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं 2 साल से रोज मुरली इंग्लिश में मेन पॉइंट्स लिखती हूँ। अननोन बी के जिसने कोर्स भी नहीं किया पूरे 2 साल से सिर्फ एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं, रोज मुरली, भाषा उन्हें इंग्लिश कंफर्टेबल है उसको लिखते हैं। तो मैंने कहा कितनी डायरीज हो गई? कहती 4 डायरी कंप्लीट हो गई। और उन्हें कहा कि इस मुरली ने मेरा सस्टेनेंस किया है। अभी कितनी बड़ी इंस्पिरेशन की बात है कि शायद हम बीके भी ये वाला चार्ट फॉलो नहीं करते होंगे लेकिन एक आत्मा जो भी बाबा का बच्चा बनी भी नहीं है, जिसको ज्ञान भी नहीं है, शायद मुरली समझ में भी नहीं आती होगी, लेकिन एक रूल में अपने आप को बांध लिया कि उसको लिखना ही है, जितना उससे समझा लेकिन उससे अपनी लाइफ को सस्टेन कर लिया। तो मुरली में नेक्स्ट क्या है जो मुरली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? कि मुरली हम ब्राह्मण आत्माओं का सस्टेनेंस है। कोई भी बीके अगर मुरली नहीं सुने और योग भी नहीं करे तो क्या होगा? बिना मुरली के, ये वर्ड नहीं अच्छा बट रियलिटी यही है कि बिना मुरली के चलना, वही उन्होंने बोला कि बिना मुरली के बाबा का बच्चा फिर वो नहीं रहेगा। मुरली है हमारी सस्टेनेंस, उसमें 2 मुरली हैं, साकार और अव्यक्त। जब मुरली आती हम सुनते हैं तो हमें डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है। साकार मुरली इज लाइक इलेक्टिव सस्टेनेंस एंड अव्यक्त मुरली जो हमारा इमरजेंसी का सस्टेनेंस है। अचानक से अगर स्थिति को बढ़ाना है, इमरजेंसी ऑक्सीजन, अचानक से अगर स्थिति को ऊंचा करना है तो अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे और डेली बेसिस की बारला साकार मुरली। तो बाबा ने कितना अच्छा रूल बनाया है कि 6 डेज साकार मुरली और हफ्ते में एक दिन बाबा हमें इंजेक्शन के शॉट्स देते हैं, वो कौन से? अव्यक्त मुरली के द्वारा। तो ये थी मुरली। अब आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट, धारणा। धारणा में बाकी सबको पता है, शरीर की स्वच्छता, सात्विक भोजन, ड्रेसिंग सेंस, ये सबको पता है। लास्ट में कौन सा आता है इंपॉर्टेंट, वो है गुणों की धारणा। बाबा ने इसमें बताया है कि हमें अपने गुणों की धारणा करनी है कि जो भी हम बातें करते हैं, जो भी मुरली सुनते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, उससे हमारी गुणों की धारणा होनी चाहिए। गुणों की धारणा कैसे हो सकती है? दूसरों के गुण देखने से। धारणा माना कि आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट क्वालिटी, कि जो गुण जो बाबा ने पॉइंट बताया वो मेरे पूरे व्यक्तित्व में दिखता है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई गुस्से वाला व्यक्ति है तो उसकी हर चीज में गुस्सा दिखता है। उसके बोल में भी गुस्सा दिखेगा, उसकी सोच भी बिल्कुल तेज थॉट्स चलेंगे नेगेटिव, उसके बिहेवियर में भी, एक्शंस में भी गुस्सा दिखेगा। ऐसा नहीं कि यहां गुस्सा दिखेगा और यहां नहीं। तो बाबा ने मुझे क्या पॉइंट बताया, अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं तो मेरे गुस्से वाली सोच, मतलब आवेश वाली सोच, एग्रेसिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, किसी का नुकसान करने वाली सोच, बदला लेने वाली सोच, ये गुस्से वाले थॉट्स हैं। तो गुस्सा थॉट्स में भी दिखता है, चिड़चिड़ापन फिर वो एक्सप्रेशन में आएगा। तो इसका उल्टा क्या है कि अगर एंग्री है हमेशा एंग्री, और अगर पीसफुल है तो हमेशा पीसफुल। तो हमें धारणा में स्पेशल ध्यान क्या रखना है, हमें गुणों की धारणा करनी है, दिव्य गुणों की धारणा। लास्ट है सेवा। सेवा में कौन से पॉइंट्स है? मनसा, वाचा, कर्मणा, और उसमें भी फिर गुणों की सेवा। मनसा सेवा इज नंबर वन, जिसमें हमारा स्पेशल अटेंशन चाहिए। चार्ट वाचा सेवा के लिए हमने कभी रखा है? हमने कर्मणा सेवा के लिए कभी चार्ट रखा है? वो ऑटोमेटिकली होते हैं, लेकिन हमें मनसा सेवा के लिए चार्ट रखना है। मनसा सेवा स्पेशली देखना है कि कितने मिनट से मनसा सेवा करनी है, और उसमें न्यूनेस कौन सी आएगी, हमें नूतन पथ कौन सा रचेंगे मनसा सेवा में, कि हम सबकी मनसा सेवा तो करते हैं जो हमने कल सुना, लेकिन सबसे पहले किसकी करनी है? खुद की और जो मेरे आसपास है, माय फैमिली मेंबर्स, माय कलीग्स, जो साथ में रहते हैं, मेरे परिवार वाले और जो मेरे कलीग्स हैं, उनकी मुझे सबसे पहले मनसा सेवा करनी है। मनसा सेवा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का रामबाण है। अगर चलते चलते इंटरैक्शन में किसी भी आत्मा से कोई कन्फ्लिक्ट हो, किसी से भी, तो लास्ट जो दाव है हमारा वो है मनसा सेवा और शुभ भावना। लौकिक में लोग दूसरे तरीके अपनाते हैं कि हम डिस्कशन कर ले, कम्युनिकेशन कर ले, ओपन टॉक कर ले, लेकिन वो तब फायदेमंद होंगे जब वो दूसरे आत्मा रिसेप्टिव है। लेकिन जब खत्म, आपने फोन कॉल कर लिए, नहीं उठा रहे, मैसेज कर लिया, उसने आपको ब्लॉक भी कर दिया, फिर लास्ट में क्या बचा? चिट्ठी लिख के भेज सकते हैं, वो जवाब नहीं आएगा, फिर रेस्टलेसनेस होगी। लास्ट में है मनसा सेवा और शुभ भावना। मनसा सेवा और शुभ भावना से वो आत्मा जो नेगेटिव है धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगी। और इसके बाद एक और स्टेप, न्यूट्रल होने के बाद फिर हम बहुत पॉजिटिव और बहुत नजदीक लाने की कोशिश ना करें कि अब आप मेरे सबसे अच्छे मित्र, न्यूट्रल होके फिर डिटैच हो जाओ। ये है बेस्ट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। टाइम तो लगेगा, उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन रेजोल्यूशन तो मिलेगा। एटलीस्ट जो कन्फ्लिक्ट है वो तो खत्म होगा। ऐसा तो नहीं ना कि संगम युग के एंड में ये चार पांच आत्माएं हैं जिनसे मेरा संस्कार मैच नहीं होता, वो लिस्ट तो नहीं रहेगी ना, वो लिस्ट तो जीरो करनी है। तो मनसा सेवा, बाबा ने सेवा के लिए और इम्पोर्टेंट कौन सी बातें बोली है कि जब हम आते हैं किसी आत्मा के इंटरेक्शन में आते हैं, तो ये नहीं सोचना कि आप कर्म बंधन में है। आपको क्या सोचना है? सेवा का संबंध है। सेवा का संबंध सोचेंगे तो हमें हैवीनेस फील नहीं होगी। और बाबा ने चार्ट में कौन सी बातें बोली है? बाबा ने कहा है, हाँ, लंबा चौड़ा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में, यस और नो। इसलिए हमारे चार्ट भी हमेशा पॉइंट वाइज होने चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, टिक और रॉन्ग, ठीक है? हाँ, एक पॉइंट और फिर टिक और रॉन्ग, यस और नो। हम जो चार्ट बनाते हैं उसे कौन चेक करता है? और उसके बाद, हाँ उसके बाद तो बाबा ही करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा हर एक बच्चे का चार्ट चेक करता है। बाबा ने लिखा है कि चाहे लास्ट से लास्ट वाला बच्चा भी है लेकिन फिर भी मैं उसका चार्ट चेक करता हूँ। तो फिर चार्ट में स्पेशल अटेंशन है कि मैं तो चेक कर ही रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही लिख रही हूँ, मैं ही चेक कर रही हूँ और बस मुझे ही सब कुछ पता है, सब कुछ यहाँ दफन है। नहीं, सब कुछ ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, बाबा देख रहे हैं। तो बाबा मेरा चार्ट चेक करता है। बाबा ने चार्ट में एक चीज़ और बताई कि रोज़ अपने आप को मार्क्स देने हैं, रोज एंड में अपने आप को मार्क्स देने हैं। अगर आज 50 नंबर दिए तो कल 51 होने चाहिए, चाहे स्लो स्पीड हो लेकिन वो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जाए। दूसरे तो फिर बहुत अच्छे से लिखेंगे, है ना? अच्छा है, दूसरे से लिखवाएंगे तो क्रिटिक्स व्यू भी मिल सकता है हमें। लेकिन बाबा ने कहा कि हमेशा पुरुषार्थ में ट्रैक पे रहना है, मतलब आपका ग्राफ और आपका पुरुषार्थ जो है धीरे धीरे बढ़ता जाए। ये बाबा ने इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है चार्ट में जो मुझे हमें फॉलो करनी है वो है कलर कोडिंग। आपने बहुत सारी चीज़ें चार्ट में लिखी, पॉइंट्स बहुत सारे लिखे। ग्रीन कलर जो मैं आसानी से करती जा रही हूँ, जो हो गए। रेड कलर जिसमें मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है, तो ध्यान आएगा कि सबसे ज्यादा टेंशन मुझे इस रेड कलर में दिखना है। बीच में फिर कोई भी कलर, येलो ब्लू जो आप चुन सकते हैं, जो कि मॉडरेट फेज में चल रहे हैं। तो चार्ट में कलर कोडिंग है। जैसे हम लौकिक में रखते हैं, हम रोज टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो पॉइंट तो 10 है जो रोज करने हैं अस्पताल में आगे, लेकिन 2-3 पॉइंट में एक सर्कल, मतलब सर्कल वाली चीज आज 24 घंटे में खत्म करनी है। यस, स्पेशल हाईलाइट। तो चार्ट में इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। बाबा ने कहा कि आप अपना मंथली चार्ट बनाओ, 3 मंथली चार्ट बनाओ, रोज अपना ट्रैक देखते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल हम दिल्ली से मधुबन आते हैं, आज जून है, अगली बार जुलाई, सपोज सितंबर में आएंगे, फिर दिसंबर में आएंगे। तो अब जब मधुबन आना है और जो नेक्स्ट टाइम मधुबन आना है, उस बीच के बीच में क्या चेंज, क्या परिवर्तन? जब नेक्स्ट टाइम मधुबन आना है तो क्या परिवर्तन? एक छोटी चीज और वो चेंज की, एक दिमाग में एक ट्रिगर। बेस्ट है अपने सेवा स्थान से जब मधुबन आते हैं, और जो मधुबन में रहते हैं जब आप अपने घर जाते हो या अपने सेवा स्थान में जाते हो, तो इस बार मधुबन से जा रहे हैं तो बाबा ये परिवर्तन करके जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ये परिवर्तन जाना तो पड़ेगा। बाबा कहीं ना कहीं भेजेगा, घर भी भेजता है और सेवा स्थान में भी भेजता है। ओके, इन्हीं सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य को डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।